This is the Epilogue Audio Experience.
Hello, listener. Thank you for tuning into this podcast where I bring to your ears inspiring conversations with some of the best artists, singers, composers, lyricists. Every week I talk to a musical genius to find out their creative discipline. I am Eva Bhatt and you are listening to 9XM Soundcast from India's leading music channel 9XM. Do subscribe to this podcast on Epilogue Media, your one stop for engaging and entertaining podcasts. Before beginning today's episode, listener, I would like to thank you for loving our episode number 100, which was a celebration of completing 100 episodes of this podcast and the episodes that followed, the Sunidhi Chauhan episode, the Shalmali Kholgade episode, and this week I bring to you another female musician who has been creating waves, having sung songs in films like Bajirao Mastani, Kabil, Student of the Year 2, Dabang 2, Chalang, and now Radhe. Payal Dev, the young, brilliant artist from Jharkhand, has proved her mettle as a singer as well as a composer. Tumhi Aana, the beautiful melody in Marjama, was her composition. We have the Genda Phool girl, Payal Dev, with us on 9XM Soundcast.
Hello, hi dear, how are you?
So Payal, I'm so glad that we finally have you on the podcast.
Same here, Eva. Actually, I'm also glad that we are meeting today, finally. And definitely feeling so good, finally, after meeting you. And you have created a really cool vibe, of course.
There are so many things about you that are so interesting. And, you know, our listeners will really enjoy this episode. I am absolutely intrigued by the place that you belong to. The Ramgarh Cantonment, if I'm not wrong.
Yeah.
Before, you know, we start, it is very important for us to know about, you know, your background, your childhood, your musical upbringing, and all those, you know, influences that have made you, you know, Payal Dev, the artist.
See, actually, you're right. There is a place called Ramgarh Cant. वहाँ पे लोग बोलते थे, and मैं वहाँ से ही belong करती हूँ. भी अंदर है, इंटरनल एरियाज है, कुछ कोल्ड फील्ड एरियाज है, तो मैं वहां से बेसिकली बिलोंग करती हूँ. नॉट ऑल्सो रामगढ़ हमारे से थोड़ा आउटर हो जाता है. तो मैं थी कोलियरी, जो कोल्ड फील्ड एरिया थे था अरगड़ा कोलियरी, वहां से थी. मेरे डैडी वहां पे जॉब करते थे शुरुआती से. एंड ऑफकोर्स मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत सपने देखे थे शुरुआती से, क्योंकि शी वॉज इन द म्यूजिक ऑल्सो. म्यूजिक सीखती थी वो, उनको बहुत शौक था कि मुझे सीखना है. तो उन्होंने भी बाद में सीखा, एंड बाद में वो सिखाती भी थी बच्चों को. तो वो मुझे भी हमेशा बोलती थी कि तुम्हें भी म्यूजिक सीखना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट कुछ एक, बीइंग अ बंगाली, कुछ एक चीज तो आना जरूरी है. या तो डांस सीख लो या तो गाना सीख लो, क्योंकि फिर मेरे घर वाले, मेरे घर में हर कोई कुछ ना कुछ करता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि आपने ये नहीं किया. तो उन्होंने फिर समहाउ मेरा इंटरेस्ट जागा म्यूजिक में. थोड़ा सीखा मैंने, मम्मी से सीखना शुरू किया एक्चुअली. पर ऑफ कोर्स व्हेन आपके पास सब चीजें घर पे होती है, यू नो, सब सारी फैसिलिटीज होती है, तो कहीं ना कहीं लगता है अरे आज नहीं कल करती हूँ, आज नहीं कल करती हूँ, वो कल 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 ही हो जाता है. तो वैसे करके भी मेरी मम्मा ने बहुत ज्यादा पुश किया मुझे हमेशा, नहीं ये करो, ये म्यूजिक करो, एग्जाम आ रहा, तुम्हें एग्जाम में के लिए प्रिपेयर करना है एंड अच्छे से. तो मैंने एग्जाम्स भी किए इस इन दौरान. एंड तो थोड़ी सी ना, मतलब बॉलीवुड सॉन्ग्स का मुझे आइडिया नहीं था तब तक, लेकिन मेरी मम्मा ने बोला कि देखो तुम लता जी आशा जी के गाने सुनो, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है, कि डेस्टिनेशन वही होता है. तुम ये गाने सुनो, ये गाने गाने की कोशिश करो. तो उन्होंने मुझे बहुत सारे गाने, गानों के कैसेट्स दिए, तभी कैसेट्स होते थे, ऑडियो कैसेट. तो तब मैंने सुनना शुरू किया. मुझे लगा वाओ, ये तो मतलब मम्मा ऐसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं, वॉइस ऐसे चलती कैसी है. अभी जैसे वो होता है ना, लाइव गाना एंड रिकॉर्डिंग सुन रहे कोई, तो बहुत सारे सवाल उठने लगे मेरे दिल में. तो मैंने मम्मी को बोला मुझे भी करना है ये. तो बोले तुम्हें करना है तब तो मेहनत करनी पड़ेगी, म्यूजिक अगर सीखोगे तभी कुछ हो पाएगा अच्छे से। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सीरियस मोड पे लिया, बॉलीवुड सॉन्ग सुनती थी, लता जी आशा जी के गाए हुए गाने, देन धीरे धीरे वो 90s वाले में जितने मूवीज आ गए, वो सुनिधि चौहान के गाने, श्रेया घोषाल के गाने, वो
बिल्कुल
सब भी आने लगे, एंड तब से मैं सुनने लगी। एंड मेरे से पहले से मतलब नदीम श्रवण जी के गाने बहुत लोग सुना करते थे, एंड सुनने लगी मैं, सुन सुन के मुझे प्यार होने लगा बॉलीवुड म्यूजिक से उस वक्त से ही। पर एक सपना मैंने उस वक्त ही कर लिया कि नहीं मुझे कुछ करना है, अगर काश मैं ये कर पाती एक्चुअली, क्योंकि बहुत ही देखिए छोटे जगह से, अगर आप छोटे जगह से बिलोंग करते हो तो सपने देखना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभार। तो मुझे ऐसा लगा था, फिर पर मेरी मम्मा बहुत श्योर थी कि नहीं तुम्हें करना ही है म्यूजिक। इवन उन्होंने मुझे ये भी ऑफर किया कि अगर तुम म्यूजिक अच्छे से सीखोगी तो मैं पढ़ाई के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी। तो मैं बिल्कुल पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, तो मुझे लगा था कि ये पढ़ाई से बचने का बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, तो बेटर है वो म्यूजिक ही कर लूँ। तो उसके बाद किया, फिर मम्मी मुझे लाइव शोज में ले जाने लगी, उन्होंने बोला देखो
वाह
अभी तुमने ये गाने कर लिए, तुम लाइव बैंड के साथ प्रैक्टिस करो। फिर वो उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करवाया, फिर वो मुझे लाइव शोज में लेके गई, तो मैं सबके सामने गाने लगी, इतने बहुत ऑडियंस ऑडियंस होते थे उस वक्त भी, एंड लोग अप्रिशिएट करने लगे सब। तब मुझे लगा कि नहीं मुझे शायद ये थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। एंड उसके बाद भी इनिशियल लेवल पे जो पढ़ाई भी कर रही थी साथ साथ म्यूजिक पे ज्यादा फोकस्ड थी,
राइट
एंड उसके बाद समहाउ लगा कि इसका डेस्टिनेशन कैसे, ये तो मुंबई में ही होता है तो मुंबई तो जाना पड़ेगा। एंड ये मैंने डिसाइड किया आफ्टर माई 12th, जब ही मेरा इंटरमीडिएट मैंने खत्म कर लिया, तो मुझे लगा कि नहीं अब तो या तो मैं पढ़ाई कर लूँ पूरा पूरा, या तो मैं जाके वहां पे म्यूजिक ही कर लूँ। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे म्यूजिक ही करना है, पढ़ाई चलने दो, आप साइड में जो ग्रेजुएशन भी है वो साइड में चलने दो, प्राइवेट आजकल ऐसे भी होता है कि आप सिर्फ एग्जाम दे के चले जाओ एंड बाकी स्टडीज मैं खुद कर लूंगी। देन आई केम टू बॉम्बे इन 2006। उस समय बारिश का बड़ा चक्कर हो गया था, मुंबई डूब रही थी, एंड आई वॉज
ओह
देयर ओनली, आई वॉज फेसिंग दैट थिंग, यू नो। तो उसके बाद मुझे लगा अरे बाप रे मुंबई में ये भी है, पानी हर हर साल पानी भर जाएगा, क्या होगा क्या होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज इन द आई यूज टू स्टे इन द ग्राउंड फ्लोर उस टाइम पे, तो घर वर में पूरे में पानी वानी भर गया था जहाँ पे हॉस्टल था हमारा, तो ये सब हो गया। तो फिर समहाउ मैनेज किया, फिर यू नो द स्ट्रगल, ऑफ कोर्स स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत। सीडी में मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड किया कहीं पे एक स्टूडियो में, एंड स्टूडियो में ड्रॉप करना पड़ता था सीडीज की, म्यूजिक
या
कंपोजर जब भी सुने तब वो बुलाएंगे गाने के लिए। तो इस तरीके से शुरुआत किया मैंने। फिर धीरे धीरे मुझे लगा नहीं आई एम नॉट परफेक्ट येट, मैं अभी तक उस वैसे नहीं हूँ कि मैं एकदम फ्रंट में आके काम कर सकूँ, बिकॉज जहां तक मैं ऑडियो सुनू या मैंने लाइव रिकॉर्डिंग्स किया कुछ सुनिधि चौहान का देखा मैंने, श्रेया दीदी का देखा, एंड देखा मैंने बोला अरे वाह मुझे ऐसा, अगर आपने ऐसा नहीं गाया अगर इसका थोड़ा लेवल तो गाओ। तो उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की अपने आप पे कि मैं अगर प्लेबैक करना है तो कुछ एक अनयूजुअल चीजें होनी चाहिए, या तो एक अलग वॉइस टेक्सचर, या तो आपकी सिंगिंग स्टाइल थोड़ी डिफरेंट, यू नो बहुत सारी चीजें होती है। तो मुझे लगा मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, तो मैंने खुद के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करी कि नहीं मैं अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ। फिर रिकॉर्डिंग करने लगी, देखने लगी, चीजें समझने लगी, फिर एक वक्त वैसे ही आ जाता है, देन मुझे ग्रैंड मस्ती का टाइटल ट्रैक मिला गाने को, पहला जो सॉन्ग था तो मैंने वो गाया। फिर एक कॉन्फिडेंस आया, ऑफ कोर्स एक गाना फिल्म के लिए रिलीज हुआ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, ऑफ कोर्स मेरे सारे फेवरेट एक्टर्स थे उसमें। एंड उसके बाद स्लोली मैं दूसरे जगह पे भी गाने लगी, एड जिंगल्स तो गाती ही थी ऑफ कोर्स।
और फिर बाजीराव मस्तानी, हाउ वॉज दैट एक्सपीरियंस पायल, और कैसे हुआ ये बताएं।
संजय लीला भंसाली सर का फोन आ गया, मुझे लगा अब तो मैं सच्ची भाई अब तो ये मतलब इससे बड़ी चीज क्या होगी
क्या हो
सीरियसली,
सकती है।
कि मतलब उनका फोन आ गया। फिर मैं उनके लिए मैंने लकीली वो गाना गाया बाजीराव मस्तानी
बाजीराव
में,
मस्तानी
जो मैं एंड मेरे को हमेशा ये था ना, जब मैं स्कूल में थी ना तब भी मुझे लगता था तभी देवदास आई थिंक रिलीज हुआ था, मैं स्टैंडर्ड फिफ्थ या सही सेवेंथ में थी देवदास जब रिलीज हुआ था, एंड तब मुझे लगता था, एंड तभी अवार्ड शोज भी होते थे आई थिंक, तो मैंने देखा अवार्ड लेते हुए बहुत श्रेया मैम को देखा सबको, तो मुझे लगा यार जो भी संजय लीला भंसाली सर के लिए गाता है ना उसको अवार्ड जरूर मिलता है, एक वो माइंड में साइकोलॉजी वो हो जाता है ना, तो जब मैंने गाया मैंने कहा मैंने गाया तो है, पता नहीं शायद अवार्ड मिल जाए, अवार्ड मिल जाए, तो मिर्ची में फिर नॉमिनेशन आ गया मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में, एंड नॉमिनेशन आ गया तो मुझे लगा ओ गॉड नॉमिनेशन भी आ गया, पता नहीं मिलेगा या नहीं, आई वॉज तो नॉट श्योर अबाउट इट, मैं एकदम ऐसे चुपचाप बैठी थी, पीछे जाके बैठी थी डर से कि पता है मुझे मुझे तो नहीं मिलेगा, एंड सडनली जब मेरा नाम अनाउंस हुआ इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर मी, अभी भी ऐसा लगता है वो एक ऐसा हाथ में एक अवार्ड उठाना पहली बार, एंड एक छोटे जगह से आके बिलोंग हो करते हुए, एंड इतनी मेहनत करने के बाद, तो तभी लगा कि शायद अब मैं केपेबल हूँ, अब मैं फुल फ्लेज्ड अच्छे से काम कर सकती हूँ, तो उसके बाद मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आया ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद हसीनों का दीवाना आया, एंड देखिए गाने हम लोग बहुत गाते हैं, इट डिपेंड्स कि कौन सा गाना कब रिलीज होता है, टाइमिंग्स वी कैन नॉट से, तो फिर हसीनों का दीवाना, फिर वो एक एक करके जो भी रिलीजेस होते गए, एंड मेरी जर्नी शुरू हो गई, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है।
क्या बात है पायल, यू नो यू हैव जस्ट मेड मी गो बैक टू माई डेज व्हेन आई हैड कम टू दिस सिटी. यू नो आई ऑल्सो बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन कॉल्ड भुज इन गुजरात, एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्विंस माई पेरेंट्स टू यू नो ट्राई इट आउट इन मुंबई एंड यू नो.
थैंक यू सो मच, एंड मैं आपको एक और बात बोलना चाहती हूँ, आप भुज से है ऑफ कोर्स, तो यू शुड नो दिस ऑफ कोर्स, आपको पता है एक मूवी आ रही है भुज,
एंड ऑफ कोर्स
यस, तो एंड आपको पता उसमें मैंने एक सॉन्ग रिक्रिएट किया है, एंड उसको श्रेया श्रेया दी से ही मैंने गवाया है, एंड आप वो जल्दी सुनोगे ऑफ कोर्स.
अरे क्या बात है, नाउ दिस इज अ रियल कनेक्शन बिटवीन मी एंड
यस यस
Lovely. We'll be really looking forward to, and as you said that, you know, your icons, both Shreya Ghoshal and Sunidhi Chauhan, both of them we recently had on the podcast Bajirao Mastani mein, as you said that you won an award and it was a beautiful song. So I think let's just start this lovely conversation with a few lines of your song in Bajirao Mastani.
Sure, definitely. कुछ भी ना बोलूं ऐसा कर जाओ, होठों पे मेरे होठ धर जाओ, कुछ भी ना बोलूं ऐसा कर जाओ, होठों पे मेरे होठ धर जाओ, सुख वाली रुत जाने ना दूंगी, प्रेम पर साओ संग सो जाओ जाने ना दूंगी, अब तो है जाने ना दूंगी, अब तो है जाने ना दूंगी, सौतन सी रैन है आए, सौतन सी ये रैन है आए, अब तो है जाने ना दूंगी, प्रेम पर साओ संग सो जाओ जाने ना दूंगी, अब तो है जाने ना दूंगी. दिस वॉज द सॉन्ग, मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है और हमेशा रहेगा.
Of course. And मुझे जो बात खास लगती है आपकी गायकी में पायल की, you know, your voice has that rustic charm of a, you know, of a, you know, folk voice, or you know, I can say of a classical bass भी है उसमें, एक क्लासिकल का भी यू नो टच है, लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन यू सिंग सॉन्ग्स लाइक हसीनों का दीवाना एंड नाउ यू नो योर सॉन्ग इन राधे, यू नो दैट मॉडर्न कंटेम्प्रेरी फील के साथ भी जो आप जब गाती हैं, सो दैट जस्ट शोज यू नो वर्सिटिलिटी एज एज एन आर्टिस्ट. सो टेल मी हाउ डू यू स्ट्राइक दैट बैलेंस एज अ सिंगर.
एज आई टोल्ड यू कि मैंने खुद पे बहुत मेहनत की है. पहले मैं फास्ट ट्रैक्स बहुत गाती थी, तो डांस ट्रैक गाने में मुझे कभी भी इतनी डिफिकल्टी नहीं आई है. पर जब हम लोग सॉफ्ट सॉन्ग्स या कोई रोमांटिक या कुछ सैड गाते थे यू नो, तो ना बहुत फील होता था कि पता नहीं ये कैसे मैं गाऊं, ये अटेम्प्ट कैसे करूं मैं. तो एक्चुअली मैंने ये सोचा एंड इस पे ही काम किया. एंड मैंने इवन की लेसन भी है ना, म्यूजिक म्यूजिक में जैसे लेसन होते हैं, रियाज में कुछ जो आप करते हो, मैंने खुद के लेसन बनाए जो प्लेबैक के लिए क्या जरूरत है, क्या क्या चीजें है जो मुझे सही करनी चाहिए. तो वो किया, देन बहुत ज्यादा किया. तो अभी ऐसा होता है कि मैंने खुद को इस तरीके से तैयार किया है कि आप मुझे या तो सैड सॉन्ग दे दो, या तो रोमांटिक दे दो, या तो आप डांस ट्रैक दे दो, तो एक बार मैं ट्रैक सुन लेती हूँ तो मैं फील में ही आ जाती हूँ. ऑफकोर्स एज अ सिंगर मैं किसी और कंपोजर का भी जब गाना गा रही हूँ तो ऑफकोर्स मैं उनके विजन को समझ जाती हूँ कि इनको क्या और कितना गवाना है, मतलब कैसे गाना चाहिए मुझे इस गाने को, तो वो मैं समझ जाती हूँ. तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जो मैंने उस वक्त अपने आप को दिया है इसकी वजह से.
बिल्कुल बिल्कुल, वाओ अमेजिंग. एंड आई एम श्योर लाइक यू नो लाइक यू सेड दैट यू नो सिंगिंग फॉर अनदर कंपोजर एंड सिंगिंग फॉर समबडी लाइक विशाल एंड शेखर मस्ट बी लाइक एन अनदर ह्यूज ड्रीम कम ट्रू. So tell me about your experience in Student of the Year too. And I must say that I so much loved, especially that song Jhat Ludhiane Da. Oh my
God,
is a song that you and, you know, Vishal, you guys have really enjoyed, you know, it's like a blast.
Yes, yes. Yeah, of course, जब मुझे अभी भी याद है जब मैं बहुत पहले ऐसा होता है ना ऑडिशंस के लिए सारेगामापा के लिए, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बार फोर्सफुली भेजा है, अराउंड 2-3 बार. एंड 2-3 बार के बाद मैंने बोला कि अब मैं नहीं जा सकती. एक somehow जब तक थर्ड टाइम जब मैं गई थी तीसरे साल ऑडिशन के लिए, तो मुझे फाइनल ऑडिशन तक मैं पहुंच गई थी. एंड उसमें विशाल एंड शेखर ही आए हुए थे जज, मतलब सिलेक्ट करने के लिए कौन सा कंटेस्टेंट आने वाला है. तो जब मैं उनको देखी थी तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी उनके सामने. एंड ऑफ कोर्स मेरा ना एक्चुअली गला ही सूख गया था, बिकॉज यू नो ऑडिशंस पे कुछ ऐसा होता है कि बहुत लंबे वक्त तक आपको इंतजार करना पड़ता है एंड सिचुएशंस थोड़े अलग होते हैं. तो संभव मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई थी. तो जब मुझे विशाल शेखर का कॉल आया था, तो मैंने जब मैं गई थी स्टूडियो तो ये मैंने शेयर किया था उनसे. एंड वो लोग इतना हंस रहे थे, मैंने कहा देखो कैसा वक्त होता है, यू नो वक्त से पहले एक्चुअली कुछ भी नहीं मिलता. तो ऑफ कोर्स मैं बहुत लकी हूँ कि उनके लिए मैंने गाया है, क्योंकि बहुत ही सोलफुल कंपोजर्स है, हर किस्म के गाने इन्होंने बनाए हैं. एंड हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिला है इनके म्यूजिक का, एंड मिल भी रहा ऑफ कोर्स. तो आई एम थैंकफुल टू देम कि मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में 3 गाने उन्होंने गवाए हैं.
बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स रियली यू नो हैव यू सिंग अ फ्यू लाइंस ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू, जट लुधियाने दा.
ओके श्योर श्योर. जरा जरा सी मेहर तू कर दे, पलट पलट के हाँ फिर से आंखें सीखूंगी, फड़क फड़क के लचक लचक के पलक झपक के नजरों से फोटो खींचूंगी, तुझको देखा जागे दिल में फीलिंग्स ये दोबारा, आते वक्त तू सीनरी है तो जाते वक्त नजारा, होया कीजे कुड़ी हाँ मैं दिल्ली शहर दे, मैं तू जट लुधियाने दा, रम रम बम 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 रम रम बम बम बम, होया कीजे कुड़ी हाँ मैं दिल्ली शहर दे, मैं तू जट लुधियाने दा.
वाओ क्या बात है, थैंक यू सो मच.
थैंक यू
And then when you, you know, you were there with Badshah for Genda Phool, I think that was, you know, your roots speaking. So tell me about that experience too. That song just became viral and all, I mean, all kudos to the, you know, the original folk song. The melody is so, so cool. So let's talk about that.
देखिए फोक सॉन्ग ऐसा होता है जो कभी फेल नहीं होता. आप आज सुनिए या आप आगे जाके भी आप कभी भी सुनो, कितने सालों के बाद ये बहुत फ्रेश लगेगा. ऑफ कोर्स हर फोक सॉन्ग की एक यही खासियत होती है, चाहे वो गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे उड़िया हो, चाहे अदर लैंग्वेजेस में पंजाबी हो, चाहे कुछ भी, यू नो, एक अलग रंग होता है. तो ऑफकोर्स ये बादशाह भाई का आइडिया था फुल की नहीं, ये बंगाली लाइंस जो है वो बंगाली ही रहेगा, इसका रिस्पेक्ट रखते हुए, क्योंकि फोक है. इसको अगर कुछ भी लिरिकली भी चेंज कर देते हैं तो इसकी ब्यूटी वो खत्म हो जाएगी. तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन था कि भाई आर यू श्योर, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर हमारा सॉन्ग जो है कैलकटा में ही सुने, उसके बाहर लोग पता नहीं कितना क्या रिएक्ट करेंगे. तो बोले नहीं आप गाओ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये मतलब आई एम 100% श्योर. तो फिर हमने उस दिन डब किया एंड गाना ये शूट हुआ. एंड ऑफकोर्स आफ्टर सीइंग ऑल द रिस्पॉन्स, लाइक जो रिस्पॉन्स आने लगा लोगों के, एंड कॉन्ट्रोवर्सी भी हो गई, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या, लेकिन आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने ये गाना गाया है. बिकॉज मैं बचपन से अपनी मम्मी से, मैंने जब गाना सीखना शुरू किया था, मम्मी ने भी यही बोला था ये फोक सॉन्ग है, ये सीखो, फोक सॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो उन्होंने मुझे सिखाया था एंड ये गाना मैं बचपन से ही गाती थी. एंड आई एम सो लकी कि मैं अभी ये इतना बड़ा वर्जन मैंने गाया है, ऑफकोर्स, एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक बादशाह भाई for taking me on board for this song. Mere liye bahut special hai ye gana.
Let's talk about you know, Payal Dev, the composer. Payal, it's such a big feat. It's a very big achievement, you know, in this industry jahan par aaj bhi, you know, female composers ke liye aaj बहुत वक्त के बाद, यू नो, एक ऐसा माहौल बना है जहाँ पे नाउ इट्स क्वाइट नॉर्मल एंड यू नो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल फॉर द म्यूजिक इंडस्ट्री टू हैव यू नो फीमेल कंपोजर्स. नाउ देर आर क्वाइट अ फ्यू एंड वी हैव हैड देम ऑन द पॉडकास्ट टू. बट टेल मी अबाउट द इनिशियल चैलेंजेस दैट यू फेस्ड और किस तरह से यू नो कुछ भी ऐसे चैलेंजेस भी आए आपकी जर्नी में, तो वो भी जरा हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करें.
चैलेंजेस इतने फेस नहीं किया है मैंने सच बोलूं तो, क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कंपोजर बनना है तो मैं बस आगे बढ़ती चली गई. मैंने पीछे नहीं देखा कि पता नहीं क्या होगा, एंड उसके बारे में भी नहीं सोचा कि लोगों का क्या रिएक्शन आएगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे या नहीं एज अ कंपोजर. मेरा बस एक ही फोकस था हर बार कि म्यूजिक अच्छा होना चाहिए. अगर मैं एज अ कंपोजर कर रही हूँ तो वो कंपोजिशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि लोगों के दिल तक पहुंचे, क्योंकि बाद में लोग सर्च करते अच्छा ये किसने कंपोज किया. पहले पहली बार में लोगों को गाना सुन के ये बोलना चाहिए कि यार क्या गाना है, बहुत अच्छा गाना है. उसके बाद वो कंपोजर पे जाते हैं. नॉर्मली हम लोग कोई भी गाना सुनते हैं, पहले हम लोग गाना सुनते हैं फिर उसके बाद देखते हैं ये किसने कंपोज किया है. ऑफ कोर्स तो चैलेंजेस नहीं फेस किया. मैंने तब डिसाइड किया था सजना वे एक मेरा सिंगल किया था मैंने जी से, एंड उसको सलमान भाई ने शेयर किया था ऑफ कोर्स. तो मेरे लिए बहुत वो बहुत एक अमेजिंग मोमेंट था. मुझे लगा कि पहला गाना है एंड सलमान भाई ने शेयर किया, दैट मींस मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए. क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता, आपने पहला गाना बनाया हो, जिंदगी का पहला गाना आपका जो रिलीज हुआ वो सलमान खान ने शेयर कर दिया है. तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ऊपर वाले की कुछ तो मर्जी होगी. उसके बाद मैंने कंपोज करना और सीरियस मोड पे शुरू किया, एंड आई मेक श्योर कि लाइक मेरे जो सॉन्ग्स है ना वो थोड़ा कमर्शियल साउंड कर रही है, ये नहीं कि मतलब नॉन कमर्शियल नहीं लगना चाहिए. इधर इट्स इंडिपेंडेंट स्पेस में हो या फिर फिल्म में हो, इट शुड साउंड कमर्शियल ऑफ कोर्स. एंड उसके बाद मैंने ज्यादा काम करने लगी मैं एज अ फिर वैसे तुम ही आना बना. तुम ही आना की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है. भूषण सर के वहां से टी सीरीज की टीम सब ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया. जब ये गाना उनको भेजा उन्होंने बोला ये गाना हमारा है एंड ये बहुत बड़ा गाना है, ट्रस्ट मी, एंड ये गाना बहुत बड़ा बनेगा आप देख लेना. तो मुझे भी शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मतलब अब भूषण सर बोल रहे हैं, अभी पूरी टी सीरीज बोल रही है, इतनी बड़ी कंपनी है तो कुछ तो अच्छा होगा गाने में, तो मैं और ज्यादा सीरियसली करने लगी ऑफ कोर्स. एंड उससे पहले मतलब तुम ही आना से पहले दिल जानी रिलीज हो गया था, पर तुम ही आना वॉज द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ माइन जो मैंने एज अ कंपोजर लॉक हुआ है, रिकॉर्ड हुआ, सब कुछ हुआ है. तो ये गाना हुआ, फिर ये गाना आया एंड इसका क्या रिस्पॉन्स मिला है. मतलब एज अ कंपोजर मुझे इंडस्ट्री में सेट करने वाला है जो सॉन्ग, वो है तुम ही आना ऑफ कोर्स. एंड तुम ही आना इतना ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए कि मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया मुझे कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ. एंड देन उसके बाद चैलेंजेस नहीं फेस किए क्योंकि हर जगह से इतना अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा. इनफैक्ट कितने कंपोजर्स का फोन आया मुझे कि क्या गाना बना दिया आपने,
वाह
ये मतलब अनबिलीवेबल है. लोगों ने सामने से कॉम्प्लीमेंट किया है एंड इंडस्ट्री में लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे अभी तक. कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि ये एक लड़की है, फीमेल कंपोजर है तो कम है, नहीं कभी भी नहीं. सेम विथ मतलब द अदर कंपनीज ऑल्सो, जहां पे भी मैं काम करती हूँ वो लोग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहते हैं मेरे गानों को लेके, तो उससे ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ऑफ कोर्स.
बिल्कुल बिल्कुल. हाउ वाज इट टू हैव जुबिन नौटियाल सिंग योर सॉन्ग?
वेरी वेरी स्पेशल ऑफ कोर्स. मैं जुबिन को बहुत पहले से जानती हूँ ऑफ कोर्स, भाई है वो मेरा, पर ऑफ कोर्स ही सच अ ग्रेट सिंगर. आप पहला गाना कंपोज कर रहे हो फिल्म के लिए एंड आपको एक वो रहता है कि आई विश अगर जुबिन गाता ये गाना, तो ऑफ कोर्स एक फील तो आता है कि हाँ पता नहीं नई कंपोजर हूँ, शायद कोई गाए या नहीं गाएगा या नहीं, यू नो. बट जुबिन ने जब ये गाना बना तो जुबिन को बोला कि भाई एक गाना है, नई कंपोजर है, प्लीज गाओगे क्या आप? तो उन्होंने बोला कि किसने कंपोज, मैंने अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल. वो बहुत जल्दी मतलब हाफ एन आवर के अंदर वो आ गए एंड हमने वो गाना रिकॉर्ड किया. एंड पूरा तब तक अरेंजमेंट का काम चल रहा था, ट्यून हो गया, कुणाल भाई ने लिरिक्स ऑलमोस्ट हो
बिल्कुल
गया था उनका लिखना. एंड तब तक मैंने एक रफ रफ सा डब कर दिया था, ट्रैकिंग पे काम चालू था प्रोडक्शन पे. एंड उसके बाद जुबिन आ गए, जुबिन ने फटाफट गा दिया, मतलब 15 मिनट में गा दिया गाना ये. एंड आप बिलीव नहीं करोगे, ये स्क्रैच ही है जो फाइनल में गया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा गाया उस गाने को,
बिल्कुल
मतलब या अंतरा हमने ऑफ कोर्स बाद में डब किया था, एक्स्ट्रा जो अंतराज बने, लेकिन बाकी का पूरा जो है उन्होंने 15 मैक्सिमम आई थिंक 20 मिनट में पूरा गाना डब कर दिया था मेरे लिए. एंड मैंने बोला थैंक यू सो मच जुबिन, मतलब नई कंपोजर हूँ, मतलब आपने मेरे लिए गा दिया. मतलब नहीं नहीं दीदी, आपके लिए कभी भी. मतलब उसके साथ ऐसा है कि जुबिन जिसको फ्रेंड या जिसको फैमिली मानता है तो बस मानता है, ये चीज है जुबिन का.
क्या बात है, क्या बात है. वी कैन नॉट यू नो लेट यू गो विदाउट यू नो हियरिंग अ फ्यू लाइंस ऑफ तुम ही आना.
ऑफ कोर्स आई लव टू एंड डेफिनेटली आई थिंक अगर जुबिन भी बाद में ये देखते हैं तो ऑफ कोर्स ये जुबिन आपके लिए भी है, यू आर वेरी स्पेशल फॉर अस. कोई होगी जो मेरे घर को आती है, करो पीछा सदाओं का, सुनो क्या कहना चाहती है. तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना.
वाह, एक बहुत बड़ी वजह है कि ये गाना इतना यू नो सुपरहिट रहा वो ये भी कि इसमें 90s का वो मेलोडी है, यू नो 90s का वो
जी
जो फील है.
फील है, यस यस, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला मैंने 90s के गाने बहुत सुने हैं, मैंने जिया है उन गानों को. एंड आज भी अगर आप मुझे बोलो कि आप पूरा दिन 90s सुनो तो आई विल लव
आई
टू.
नो
मेरे लिए बेस्ट डे होगा कि मैं पूरा दिन 90s के जितने गाने हैं सब सुनूं, तो मेरा बहुत बहुत फेवरेट है. द स्ट्रॉन्ग थिंग अबाउट 90s मेलेडी, 90s की उसकी मेलेडी इतनी स्ट्रांग होती थी, इतनी स्ट्रांग तो वो कंपेयर ही नहीं कर सकते हो आप. आप जब सुनो तभी लगेगा वाह व्हाट अ सॉन्ग, आप आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद जब भी सुनोगे वो एवरग्रीन सॉन्ग्स है.
बिल्कुल. एंड देन व्हेन यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू सिंग फॉर यू नो द किंग ऑफ आई मस्ट से यू नो दैट दैट ईरा टिल नाउ हिमेश रेशमिया.
या
द हिट मेकर हिमेश रेशमिया जिन्होंने इतने सारे अनगिनत यू नो हिट्स तो दिए ही हैं, लेकिन फॉर मी फॉर यू नो एवरी आर्टिस्ट ही इज दैट कंपोजर हु हैज गिवन अस सॉन्ग्स ऑफ यू नो राइट फ्रॉम तेरे नाम टू सो मेनी ब्यूटिफुल मेलेडीज टू यू नो सॉन्ग्स इन मूवीज लाइक किक हो गया या फिर यू नो ऑल दोज यू नो पेपी नंबर्स एंड नाउ इन राधे अगेन दैट दैट लवली कॉम्बिनेशन ऑफ हिमेश रेशमिया एंड सलमान खान एंड वी हैव पायल देव. How was that?
मैं सच बताती हूँ, जब भी मुझे याद है जब हिमेश भाई का फर्स्ट एल्बम आया था तेरा सुरूर, मैंने इतनी बार सुना है वो कैसेट क्योंकि उसकी मेलेडी इतनी स्ट्रांग है. क्या एक नई आवाज के साथ आए थे हिमेश भाई एंड आई वाज लाइक मैं पागल थी उस एल्बम के लिए. मैं पूरा पूरा दिन सुनती थी एंड मेरे शुरुआत से ही फेवरेट कंपोजर रहे हैं हिमेश भाई.
आई एम अ ह्यूज हिमेश रेशमिया फैन एंड आई एम वेटिंग फॉर हिम टू कम ऑन दिस पॉडकास्ट.
या ऑफ कोर्स. एंड ही इज मतलब वो जहां पे रहते वहां एक अलग सा वाइब क्रिएट होता है. जब मैं उनके साथ डब भी कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं मतलब सच में ये हो रहा है क्या. मतलब हिमेश भाई के साथ डब करना यू नो बहुत अमेजिंग होता है. रिलीज में से एक है ऑलरेडी हैप्पी हार्डी हिल में, उनकी फिल्म के लिए मैंने गाया था कह रहे ये नजदीकिया, उसमें उन्होंने अलग गवाया था मुझसे एंड इस बार अलग गवाया था. देखिए कंपोजर का वही एक विजन होता है, एक कंपोजर को पता होता है ये सिंगर का कितना वो है, कितनी एबिलिटी है कि वो क्या गा सकता है या सकती है यू नो. जब ये गाना उन्होंने कंपोज करी एंड उन्होंने बोला ये गाना आप मैं चाहता हूँ आप गाओ क्योंकि हम लोग राधे के लिए कर रहे हैं, तो मैं ना एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई क्योंकि मेरे को जुम्मे की रात की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ एंड वो कॉम्बिनेशन सलमान खान हिमेश रेशमिया शब्बीर अहमद वो कॉम्बिनेशन ही सुपर हिट है यू नो. तो ये कॉम्बिनेशन थी, मैंने कहा ओ माई गॉड कहीं ऐसा मतलब मेरे को तो उस टाइम पे ही ऐसा लग रहा था ओ माई गॉड काश ये हो जाए यू नो. Sometimes you wish for that also क्योंकि सलमान भाई ने मेरे different गाने सुने हैं तो I don't know how he will react after listening to this song दिल दे दिया. फिर मैंने record करी हिमेश भाई के सामने dub किया, बहुत मजा आया, हमने session में तो बहुत enjoy किया and then हिमेश भाई ने सुनाया सलमान भाई को बहुत पसंद आया. पर उन्होंने पहले मेरी आवाज रिकग्नाइज नहीं की थी, उन्होंने बोला ये किसने गाया है तो पायल ने. अच्छा पायल ने गाया, अलग साउंड कर रही है ये. मतलब सलमान भाई हमेशा मुझे ये बोलते कि जब आप गाते हो जो आप गाने में जो बेस लाते हो वो आप बातें करने में भी बेस लाओ. लाइक अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ इट इज मे बी साउंडिंग लिटिल चाइल्डिश और समथिंग, वो थोड़ा है मेरे अंदर. तो वो बोलते कि नहीं जब आप बात करो बेस के साथ, मुझे उन्होंने बहुत बार ही बोला है एंड हर बार वो मुझसे मिलते सलमान भाई एंड मुझसे ऐसे बोलते कैसी हो या फिर इस लव में मेरे से बात करते. मैंने बोला मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है भाई, आई थिंक मैं सुनाऊंगी आपको जल्दी सुनाऊंगी मतलब ऐसे. तो इट्स एक्चुअली बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए कि वो जोड़ी हिमेश रेशमिया सलमान खान के साथ अगर मैं आई हूँ. एंड कमाल खान को मैं कैसे भूल सकती हूँ, ऑफकोर्स कमाल भाई को. उनका जो गाना था ओ जाने जाना, ओ माई गॉड, मतलब मेरा अभी तक का सबसे फेवरेट सॉन्ग है एंड उनके साथ भी है, ये मेरा पहला गाना है. तो ऑफकोर्स मुझे बहुत बहुत खुशी है कि इस गाने के साथ मैं भी जुड़ी हूँ. आई रियली वॉन्ट टू थैंक सलमान भाई एंड हिमेश भाई फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड.
Let's just you know create a madness on this podcast by having you sing a few lines of the Radhe song Dil De Diya.
Of course, definitely. प्यार का आजरा हमसे आके मिल, हो गए हम फिदा, मांगते हैं हम तुमसे दिल. इसने भी दिल मांगा, उसने भी दिल मांगा, इसने भी दिल मांगा, उसने भी दिल मांगा, मैंने इनकार किया, जा परदेसी, तुझे दिल दे दिया, मैंने इकरार किया, जा मैंने प्यार किया, जा परदेसी, तुझे दिल दे दिया, हाँ तुझे दिल दे दिया, तुझे दिल दे दिया.
Wow, you can only expect these, you know, these surprises and these twists and turns in a Himesh Reshammiya song.
Yes. Of course.
Wow, बहुत बहुत अच्छा लगा, you know, आपसे बातें करके. पायल, you are so like Salman Khan says, you are so bubbly and you are so chirpy. You are so full of energy. It's so infectious and it's just lovely. But when we hear your compositions or when we hear, you know, you as a singer, we feel that, oh my God, a very serious person out there. Yeah. You know, Payal Dev must be a very, you know that maturity. We can feel that maturity in your compositions, which is brilliant. Yeah. Which is now, I think it's a lovely thing to have. You know, your compositions are, they sound very mature. So that's a lovely thing.
That's all God grace. Actually, kabhi maine socha nahi tha as a composer karungi. Ye upar wale ki hi wo hai rehmat hai jo wo mujhe de rahe hai. Of course, as a composer, unhone meri ek alag image banai hai. So I really want to thank my God, Shiva. He is only there for me. Of course, he is always there for me as a singer. भी जब कर रही थी हर बात पे मुझे बहुत support मिलता है मेरे God का भी. तो I really want to thank them all.
Wow. And jade, let's listen from you, your tips and your messages for all young aspiring talent newcomers out there who are seeking help in terms of, you know, making their career in music. क्या टिप्स, क्या सजेशंस देना चाहेंगे आप अपने एक्सपीरियंसेस से?
देखिए, जो भी नए जो भी सीख रहे हैं म्यूजिक, एक जो चीज मैंने नहीं किया वो प्लीज मत करना आप लोग, कि सीरियसली नहीं सीखो. अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आपके सामने है, तो उसको जरूर ग्रैब कीजिए एंड खुद पे बहुत मेहनत कीजिए. देखिए, प्लेबैक एंड लाइव सिंगिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है. जब आप प्लेबैक करते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती है. वॉइस टेक्सचर हो गया, द टेक्निक्स व्हाट यू आर यूजिंग फॉर द प्लेबैक, विब्राटो एंड वैसे बहुत सारी चीजें हैं. तो आप उस पर भी काम कीजिए. एंड जो भी चीज कर रहे हैं आप, या तो लिरिक्स लिखते हो, या तो फिर गाना गाते हो, या तो कंपोज करते हो, तो बहुत ही ज्यादा दिल से कीजिए, क्योंकि दिल से किया हुआ काम कभी भी वेस्ट नहीं जाता. एक ना एक दिन आपको उसकी उसका फल मिलता ही मिलता है. तो ऑफकोर्स अपने वक्त का इंतजार कीजिए एंड खुद को तैयार कीजिए कि कल दिन को आपके पास अगर कुछ काम आया, आप रिफ्यूज नहीं करने चाहिए. आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस गाने को गा लेते हो, या फिर आप लिख लेते हो, या फिर आप किसी अदर फील्ड में हो, आप वो कर लो.
बिल्कुल, थैंक यू सो मच. वाओ, थैंक यू सो मच पायल. इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द पॉडकास्ट.
अमेजिंग है वाल, पता, आपसे बात करके ना इतना, मतलब वो बोलते हैं ना, आप भी बहुत सुकून से बात करते हो, एंड मैं खुद भी बहुत ना वो बात करना मुझे बहुत पसंद है. तो आपके साथ बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे भी. मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम करा है आपके साथ, एंड मुझे लगता है अब हम लोग अक्सर मिलते रहेंगे.
बिल्कुल.
एंड हर बार आपसे मिलूंगी एंड हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे. मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपके साथ अभी.
वाओ, थैंक यू सो मच पायल. इट वाज लवली टू हैव यू.
थैंक यू एवा, थैंक यू फॉर हैविंग मी. हेलो लिसनर्स, आई एम पायल देव और आपने मुझे अभी सुना है 9XM साउंडकास्ट पर. तो इस पॉडकास्ट को जरूर सब्सक्राइब करें.
Listening to Payal Dev's story, I feel that it's true when they say don't be afraid of dreaming big. And just dreaming or imagining is not enough, of course. Dedicated efforts and patience are required. One thing that Payal said, which I feel every aspiring singer should pay attention to, is about trying to hone your skills, learning the nuances, training yourself by listening as well as rehearsing different kinds of songs, different genres. Because if you wish to become a playback singer, you need to be that versatile artist in today's times. So guys, share with me your experience of listening to this podcast. Write to me at eva.bhatt@9xmedia.in. You can connect with me on Instagram at Eva Bhatt Podcast. Rate and review this podcast on Apple Podcasts. Subscribe to the podcast on Epilogue Media, the website, so that you don't miss any episode. You can also enjoy the videos of our previous episodes on the official YouTube channel of 9XM and Spotlamp. Just search 9XM Soundcast on YouTube. I will talk to you guys next Wednesday with a fresh episode. This is me, Eva, signing off for now. You were listening to 9XM Soundcast on Epilogue Media.